interview with Shailene Verma at BHU campus on 2nd of May 2018, conducted by Aheli Chaudhary. The recording begins now.
Shailene, आप थोड़ा सा अपने personal history थोड़ा अगर बताएं मेरे, कहाँ पढ़ी हैं, कौन-कौन लोग हैं घर में, BHU कैसे आना हुआ, इसके पहले कहाँ पढ़ रहे थे? Just a little bit about yourself.
मेरा नाम शैलेन वर्मा है और जो मेरा नेटिव प्लेस है वो यूपी का नेपाल बॉर्डर लगता है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ पे मेरी फैमिली 1988 से रह रही है. हम लोग जो उसके पहले ग्रैंडफादर वगैरह थे वो शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट है, पड़ोस में ही, वहाँ के हैं. और जब फादर की जॉब के बाद 1988 में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए. और फैमिली बैकग्राउंड में ये एक सिंगल सन, एक मेरी सिस्टर है और मम्मी और पापा दोनों, तो एक तरीके से चार लोगों की फैमिली है. एजुकेशनल ये है कि मेरी पूरी स्कूलिंग क्लास 6 से और इंटरमीडिएट तक सरस्वती विद्या मंदिर में हुई है, जो लखीमपुर में हुई. उसके बाद जो हिंदी मीडियम था उसके बाद से फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो एक साल का गैप हुआ, फिर यहाँ BHU आना हुआ 2007 में. 7 से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2010 तक यही सोशल साइंस फैकल्टी में. फिर उसके बाद 2010 में PG पास हुए पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा स्पेशलाइजेशन था. उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की तरफ मूव हुए, उसकी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली शिफ्ट हुआ. 2 साल वहाँ रहा, उसमें एक अटेम्प्ट UPSC का मैंने दिया था. 2 साल के बाद जब मेरा नेट हो गया तो मैंने यहाँ अप्लाई करना शुरू किया रिसर्च के लिए. तो सबसे पहले मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च में अप्लाई किया था और हो गया वहाँ. तो 2015 सितंबर बैच से यहाँ पे PhD में मैं एनरोल हूँ.
तो इस जो मूवमेंट यहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही थी उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ आपका?
सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं उसमें ये चीज़ पहले से ही बताया ही समझाया गया कि जो आपके आसपास हो रही है उस पर घटनाओं पर क्रिया प्रतिक्रिया करना ज़रूरी है. वो चाहे वो हम में थोड़ा कमी है और मेरी सिस्टम में वो चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि वो भी यही स्टूडेंट थी. तो उस समय से वो चीज़ इनबिल्ट ही है एक तरीके से, और उसको थोड़ा हवा मिल गई जब कैंपस में आए कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से शेप लेती हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड लोगों का किस तरीके से शेप लेता है, सोशल एटमॉस्फेयर क्या है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस हद तक लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, पावर स्ट्रक्चर क्या है, यूनिवर्सिटी कैंपस कैसे होते हैं, हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, और एजुकेशनल सिस्टम में क्या क्या लूप होल्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ आके पता चली. और कैंपस अपने आप में इस चीज़ में एक यूनिकनेस लिए हुए हैं कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी होने के नाते इसके कई एडवांटेज भी हैं कि आप कहीं अरुणाचल से, सिक्किम से, कश्मीर से, श्रीनगर से, कहीं से भी अगर स्टूडेंट यहाँ आता है तो एक अटैचमेंट यहाँ हमेशा पाएगा, वो लाइफ टाइम चलता है उसका. क्योंकि जैसे BHU के गेट पे आते ही आपको दिखेगा ना कि महामना के आदर्शों पे ये कैंपस खड़ा हुआ है, और वो सब एक जो सिंगल इंडिविजुअल जो भी आपको मिलेगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, कोई फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हो, कोई डेस्क जॉब करने वाला एम्प्लॉई हो, सब में वो चीज़ दिखेगी. तो वो अवेयरनेस जो आनी चाहिए वो वहीं से आ गई ग्रेजुएशन से. तो कैंपस में वाकई एक माहौल रहा है शुरू से.
ये जो लोग यहाँ पे लाइब्रेरी मूवमेंट ये सब कर रहे थे, इनके साथ आप जुड़े कि इनके साथ आपका कोई 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 और पॉलिटिकल आउटफिट या एबीवीपी या ऐसा इनके साथ आपने जुड़ा हुआ आपका कैसे?
जब हम लोग आए थे यहाँ पे 2007 में, उसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उतना यहाँ पे इतनी एक्टिविटी नहीं थी जो पॉलिटिकली तरीके से हो रही है। हाँ, सोशल स्ट्रक्चर में कुछ इशू हुआ, उसके लिए रिएक्शन, उसके किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर डिमांड होना, वो सब चीज़ें यहाँ पे चलती थी। ये चीज़ क्रेडिट देना चाहेंगे हम अन्ना आंदोलन को कि जो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस का लैग था, खास करके यूथ में, वो नहीं समझता था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बहुमत दल का नेता क्या है, प्रेसिडेंट के क्या रोल हैं, क्या वो स्टाम्प है कि नहीं है, वो जो मेजर डिबेट थी उसका हिस्सा नहीं था वो। लेकिन अन्ना मूवमेंट के बाद से ये चीज़ पर्सनली मैंने फील की है कि किस तरीके से लोगों ने हाथों हाथ लिया है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। जैसे मोदी का ब्रांड बन जाना, वो अपने आप में एक अवेयरनेस का प्रतीक है। कांग्रेस का निकल जाना पावर स्ट्रक्चर से, वो उसी का रिजल्ट है। इतनी बड़ी मेजॉरिटी आना, वो भी एक उसी का रीज़न है। और उसके बाद से फिर ये हुआ ना कि अन्ना मूवमेंट के बाद से लोगों को ये समझ में आने लगा कि हाँ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी चेंज होना चाहिए। ये स्टेबल जो रिजीम चली आ रही है उनको बदलना पड़ेगा। तो फिर लोगों ने खंगालना शुरू किया, यूथ की बात कर रहे पर्टिकुलर, कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से चेंजेस आने चाहिए।
तो दिस इज़ ऑल राइट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर जर्नी, बिकॉज एक तो स्ट्रक्चर का वो सब जो जनरल एक छवि है वो है थोड़ा बहुत। मैं जानना चाहती हूँ कि आप पर्सनली कहाँ कहाँ जुड़े और जुड़े थे कि नहीं, मतलब
तो कोई ये जो स्टोरी है, बैकग्राउंड बता रहे हैं, ये मेरा ही है। अन्ना मूवमेंट में हम लोग साथ में गए थे, कुछ 8-10 लोग, 15 लोग, यहाँ कुछ लोग, जैसे वो तो लंबा टाइम था ना, लगभग
एक दो, साल का चला,
हाँ लगभग 2-3 महीने अपने बूम पे था वो। तो उस 2 महीने के ड्यूरेशन में अच्छी खासी पब्लिसिटी मिली मूवमेंट को, यहाँ के लोगों ने भी अलर्टनेस दिखाई, कैंपस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स मूवमेंट को एक तरीके से अलर्ट किया कि हाँ, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। वो किसी पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं खड़े हुए थे, वो एक अल्टरनेट सिस्टम चाहते थे कि हाँ, इसका अल्टरनेट ये भी हो सकता है, वो चेंज चाहते थे। इसीलिए जैसे हम गए, वैसे कई स्टूडेंट्स गए थे, कई प्रोफेशनल जो लोग काम करते हैं वो लोग भी गए थे। रामलीला मैदान पहुँचे, उन्होंने भी 2-4 आवाज़ें लगाई, उन्होंने डिमांड रखी, अपनी बात रखी, मौका मिला उनको कि हाँ, हमारी बात भी वहाँ पहुँचेगी तो सुनी जाएगी। और वो इसीलिए उसको कहा भी गया ना कि भाई, ये दूसरी आज़ादी का पर्व है कि हाँ, इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो एक इंडिजीनियस फ्लेवर लिए हुई होंगी कि हाँ, जो लोग हम लोग जो चीज़ चाहते हैं वैसा ही होने की संभावना है। अब ये नहीं है कि गिनती के 200 लोग जो स्टेट में या पूरे कंट्री में रूल कर रहे हैं, सिर्फ वही उन्हीं के हाथ में है। उसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल वीआईपी स्ट्रक्चर ठीक अपोजिट में खड़ा होता है। उसके पहले आपको एंटी वीआईपी स्टेटस नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन जो वीआईपी स्टेटस के खिलाफ जो आवाज़ें खड़ी हुई हैं वो उस मूवमेंट की बदौलत ही खड़ी हुई हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ों ने मिल के हमको, आपको, कई लोगों को अवेयर किया है कि हाँ, ये चीज़ भी होनी चाहिए। उसी घटनाओं को आगे बढ़ाते हुए वो फेमिनिस्ट मूवमेंट से भी जुड़ा, वो किसान मूवमेंट से भी जुड़ा, वो लेबर स्ट्रक्चर को भी चेंज करने की बात करता है, वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस को भी चेंज करने की बात करता है।
नो, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू इंटरप्ट अगेन। आई वांट यू टू टेल मी योर पर्सनल एक्सपीरियंस। वन इज दिस, आई व्हाट यू आर सेइंग कि ये शायद ये सारा जो चीज़ है इसने आपको अफेक्ट किया, मतलब फ्रॉम अन्ना मूवमेंट की बाकी चीज़ें। बट एक तो जनरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें अफेक्ट करती है, बट हमको, हमने उस जो जनरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में ट्रांसलेट किया, वो थोड़ा सुनना चाह रही हूँ मैं। मतलब इन द सेंस, आप अगर रामलीला मैदान में गए तो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, आप गए कि नहीं, फिर आप आए यहाँ पे, आप आने के बाद आप लाइब्रेरी मूवमेंट या बाकी चीज़ें हो रही थी कि उसमें जुड़े कि नहीं, थोड़ा सा आप अपने ऊपर थोड़ा सा बताइए।
अन्ना मूवमेंट में हम लोग लगभग एक महीने का प्लान बना के यहाँ से निकल के रामलीला मैदान तक गए थे।
कितने लोग थे हम लोग?
लगभग वही 15 के आसपास रहे,
15 लोग।
अब उसमें यह था ना कि ड्यूरेशन बड़ा होने के नाते एक ही पर्टिकुलर टाइम पे लोग नहीं गए कि हाँ 200 स्टूडेंट चल के चला जाएगा।
लोग जाते
कुछ
रहे,
लोग 10 लोग गए, फिर 15 लोग गए, फिर वहाँ मिले कुछ यहाँ के जो पहले पास आउट हम लोग के सीनियर्स हैं वो वहाँ पे मिले, कई लोग जो मीडिया हाउसेस थे उसमें काम करते थे वो लोग फिर वहाँ के मिले। तो धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर बन गया कि हाँ बनारस VHU के नाम पे ये लोग भी हैं।
ठीक है, फिर वहाँ से आप लोग आ गए।
फिर वहाँ से जब रिटर्न हुए तो कई लोगों के लिए शौक था ना कि एक पार्टी ऐसी निकल गई वहाँ से जो अल्टरनेटिव की बात करती थी, और वो वाकई बात ही करती थी। वो ये नहीं चाहते थे कि कुछ जैसे होता ना कि स्ट्रक्चर चेंज करने की डिमांड करना, वो चीज़ फिर से वही लैक हो गया कि एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आने के बाद जैसे कहते हैं ना लोग कि अगर आपको सिस्टम चेंज करना है तो सिस्टम का हिस्सा बनिए पहले, ठीक वही चीज़ उस अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया।
फिर यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ, once you came back, tell me about you.
हाँ तो फिर ये अन्ना मूवमेंट के बाद से वैसा कुछ सोशल मूवमेंट सोशल एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि जैसे होता है ना कि एक ज्वालामुखी के बाद कई चीज़ें शांत हो जाती हैं कि हाँ ये चीज़ अब अपने अपने शेप में ले लेगी, फिर उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलेंगे उस पर लोग क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो जो ड्यूरेशन है पर्सनली मैं तो फिर UPSC के लिए निकल गया था यहाँ से, क्योंकि PG पास आउट होते ही अगस्त सितंबर के आसपास जब दिल्ली में पहुँचा तो वो बूम पे था मुंबई।
तो फिर आप UPSC करके फिर आप जब BHU वापस आ गए,
फिर जो ये 2 साल का ड्यूरेशन है इसमें मेरी कोई सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं रही ऑन द ग्राउंड। और फिर जब यहाँ रिसर्च में एनरोल हुए सितंबर 15 में
2015
हाँ, उसके बाद से ये चीज़ फिर से उसी तरीके से कि अब जब स्ट्रक्चर में आ गए हैं तो जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अवेयरनेस अलर्टनेस है उसके हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे। तो उस रिएक्शन का जगह जगह पे जो जो लाइब्रेरी मूवमेंट हुआ, फिर मैथ्स को लेके लगभग तो हर यूनिवर्सिटी में चलता है कि मैथ्स को लेके कहीं बंद कर देना, उसके लिए डीन ऑफ स्टूडेंट को बात करना, वो सब चीज़ें चलती रही। फीस एक लालजी सिंह जब VC थे तो फीस स्ट्रक्चर को लेके बहस हुई थी तो उन्होंने रोल बैक भी किया कि जो बढ़ी हुई फीस है वो वापस ली जाती है, वो एक सक्सेसफुल मूवमेंट था। ऐसे छोटे छोटे इश्यूज पे बात हुई है। हाँ लाइब्रेरी इशू के ठीक पहले थे अन्ना इशू और लाइब्रेरी इशू, इसके बीच में जो 4 साल का गैप है उसमें सिर्फ एक जो फीस रोल बैक वाला एक इशू है वही मेजर है।
लाइब्रेरी इशू में आप भागीदार थे उसके?
लाइब्रेरी इशू में हम लोग साथ में ही थे, अनशन में मैं बैठा नहीं था लेकिन ये था कि हम लोग आते जाते सपोर्ट करना और जो जो आसपास की चीज़ें थी उन पर बात कर रहे थे।
अच्छा।
और जो भी हो सकता था उस तरीके से अपना सपोर्ट दे रहे थे, ये चीज़ थी।
फिर उसके बाद क्या हुआ आफ्टर द लाइब्रेरी, बिकॉज़ दिस पीपल स्टार्ट
रेस्ट उस इशू का या किसी और चीज़ का?
नहीं आपका, मतलब मैं सिर्फ आपकी जर्नी, बिकॉज़ इशू आप सब लोग जानते
हैं, जो लोग
क्रम बाय क्रम मुझे पता है वो अभी डॉक्यूमेंट भी हो गई है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर जर्नी इन दिस टाइम from the library issue till September and from there to now.
अन्ना उस लाइब्रेरी इशू के बाद से फिर वैसा कुछ पॉलिटिकल डिमांड या कुछ वैसा डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं रहा मेरा। उसके बाद से फिर जब बताया ना कि रिसर्च में जब आ गए तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर समझ में आने लगा, फिर उन पर रिएक्शन होने लगा धीरे धीरे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हॉस्टल्स में हो रही हैं, फैकल्टीज़ में हो रही हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने के लिए हम लोग लगातार आवाज़ करते थे कि हाँ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे अलग अलग लेटर्स लिख के या जिस तरीके से हो सकता था उस तरीके से बात करते थे।
एंड देन कैन यू टॉक अबाउट द सितंबर अनरेस्ट जो हुआ लड़कियों का, उस दौरान क्या था, मतलब वो दिन में कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे?
हम और विकास ये लोग हम लोग साथ में थे। कोई किसी कॉलेज का फॉर्म आया हुआ था रिक्रूटमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो हम लोग को रात में उधर ही लंका साइड एक फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड हम लोगों का, उसके रूम पे जाना था क्योंकि उसके यहाँ वाईफाई अच्छा आता था। प्रोसेस बहुत लेंथी था। तो रात में हम लोग लगभग खाना डिनर वगैरह लेके 11:30 या 11 बजे के आसपास पहुँचे होंगे। तो आधा फॉर्म फिल हुआ था तब तक कॉल आई, कोई जर्नलिस्ट था तो विकास के कॉल उस पर सेलफोन पर ही कि ऐसा ऐसा है, मतलब रेयर केस हुआ है ये चीज़। तो ये सुन के फिर हम लोग कुछ ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स रिएक्शन होगा ही। तो जब ये हुआ तो हम लोग ने पता किया कि इशू क्या है। तो इशू में यही निकला कि जो एक कोई स्टूडेंट थी वो वहाँ से जा रही थी और उसके साथ ऐसा ऐसा केस हुआ है। तो जो भी अब ये भी था ना कि कैंपस में ये भी एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है कि अगर कोई ऐसा रेयर केस होगा तो रिएक्शन तो एग्रेसिव रहेगा ही, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। तो अब जब इंसिडेंट ऐसा है तो एग्रेशन भी वैसा ही रहेगा। तो जिसने भी सुना वो रिएक्ट उसी तरीके से कर रहा था। लेकिन अब ये था ना कि अब उस जो सेंटिमेंट था उसको फॉरवर्ड किस तरीके से ले जाना, एक शेप करके कि किस तरीके से मूवमेंट को, मूवमेंट अगर खड़ा होगा तो मूवमेंट को किस तरीके से करना है,
दिशा कैसे देना,
किस तरीके से हाँ वो आगे कैसे बढ़े। क्योंकि ये था ना कि ऐसा इंसिडेंट हमको नहीं लगता कि हाल फिलहाल में इतना रेयर केस हुआ हो किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में, और वो भी स्टूडेंट्स के बीच का बात। तो इस पर रिएक्शन होना स्वाभाविक वैसा नेचुरल था ही। तो रात में फिर हम लोग जब पता करने लगे तो पता चला कि हाँ, इसका जोसना की भी बीच में कॉल आई थी, क्योंकि हॉस्टल का जो वो पूरा है पेरीफेरी है वो अपने आप में लॉक है। तो आप वहाँ पहुँच के भी आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं जब तक कि गेट खुला नहीं होगा। तो सेलफोन के थ्रू ही कॉल हो रही थी, बात हो रही थी कि क्या क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। तो फिर बाद में पता चला कि VC साहब भी गए हुए हैं लगभग एक घंटे के बाद, 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद। तो हम लोग को लगा कि नहीं, वाकई इशू बड़ा है। तो इसमें अगर हम लोग एक साथ होके कुछ अगर डिमांड करते हैं तो वाकई कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे उसको जस्टिस वाली बात थी, उसी के हिसाब से अगर जो पहले से जेंडर इश्यूज चल रहे थे उनको चेंज करने की बात।
क्या जेंडर इश्यूज, क्या क्या चल रहे थे?
जेंडर इश्यूज जो मेन है वो तो जैसे फूडिंग की एक जो प्रॉब्लम है हॉस्टल्स में वो है, हाइजीन का इशू है हॉस्टल में, पानी नहीं है, साफ पानी नहीं।
बट वो जेंडर का कैसे है, फूड का तो एक
डिस्क्रिमिनेशन, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल में ही डिफरेंस है ना।
अच्छा,
इसलिए जेंडर
इशू। पानी भी, पानी का भी दिक्कत दोनों हॉस्टल,
लड़के बॉयज हॉस्टल में तो डिमांड कर सकते हैं क्या ऐसा ऐसा करिए वैसा वैसा करिए, पानी तोड़ ये तोड़ दिए वो तोड़ दिए तो कल को लग गया। ये यहाँ का स्ट्रक्चर है। और अगर गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा करते हैं तो आपको या तो रेस्टिकेट कर दिया जाए या कुछ ये कहते हुए कि आप पे ऐसा कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए आपको ऐसा ऐसा कहा जाता है किया जाता है तो आपको हॉस्टल से निकाल देंगे। तो वो ये डिफरेंस है। बॉयज़ हॉस्टल में आप जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एक्शन लेते हैं तो आप प्रोज और कॉन्स को ध्यान में रखते हैं कि हाँ ये जाएगा कहाँ कैसे क्या करें। लड़की और गर्ल्स वाले हॉस्टल वाले केस में आपको साफ साफ पता चलेगा कि देखिए ये सीधे डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया, अब गार्जियन की जिम्मेदारी है, उनको कॉल कर दिया गया, वो आके सामान वामान ले जाए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए। वो डिफरेंस है। प्लस जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू और अपने जो सराउंडिंग है उसके हिसाब से एक इशू ये भी आता था कि जो उनका ड्रेसिंग सेंस है उस पर भी टिप्पणी होती थी, कमेंट होते थे सिक्योरिटी गार्ड से, वहाँ के वार्डन से, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफ है वो सब टोका टिप्पणी करते थे कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ये ड्रेस पहन के तुम बाहर मत जाओ, यहीं गेट से जो कुछ बात करनी है कि बात कर लो। तो ये वाला एक इशू था।
तो फिर उस दिन मतलब बेसिकली यू फेल्ट दैट ऑल दीज इशूज कुड ऑल्सो बी पिक्ड अप, मतलब
हाँ, जैसे होता है ना कि छोटे छोटे इश्यूज को एक आवाज़ मिल गई।
अच्छा,
कि हाँ अब ये चीज़ एक बड़ा रूप लेके कुछ पॉजिटिव साइन हो जाते हैं ना। मूवमेंट में यही निकलता ही है, वरना फिर अलग अलग लोग अगर अपनी डिमांड करेंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक आवाज़ बनने के लिए ये सब छोटे छोटे इश्यूज एक जगह पे आ गए।
ठीक,
वो जो डिस्क्रिमिनेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग जगहों पे, टीचर्स के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, वो सब एक जगह पे कलेक्ट हुआ। तो इसीलिए हमको लगता है कि मूवमेंट बड़ा खड़ा हुआ और फर्दर हर जगह उस पर कमेंट्री हुई, बातचीत हुई।
अब जब आप थोड़ा सा पीछे से देखते हो टाइम, क्या लगता है कि मूवमेंट में क्या वीकनेस क्या रही, मतलब क्या चीज़ ऐसी थी जो और बेहतर कर होती तो और बेहतर होती होगी
मूवमेंट की, पर्टिकुलर इस मूवमेंट की वीकनेस क्या थी?
हाँ, मतलब इस दौरान ये जो हुआ मेनली, स्पेशली जो लड़कियों का जो मूवमेंट हुआ उसमें आपको क्या,
स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में अगर बताना हो तो कई लोग ये कहा गया ना कि वो मूवमेंट अपने आप में फेल हो जाता है जिसमें कोई लीडरशिप ना हो, लेकिन यहाँ पे हमको जो मेरा पर्सनल बिलीफ है वो ये है कि मूवमेंट की लीडरशिप नहीं होने की वजह से ही ये इतना लंबा चल पाया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब पावरफुल होता है ना तो वो कुछ लोगों को वहाँ से पिकअप किया, चार पांच लोगों को VC ऑफिस ले गए, वहाँ पे साइन बातचीत जो भी कन्विंस करना है वहाँ पे कन्विंस कर लिया और उनको बाहर कर दिया कि आप जाके अपने जो आपके पीछे लोग खड़े हैं उनको ऐसा ऐसा कन्विंस कर ले जाइए। तो ये मूवमेंट को कूल डाउन करने का नेचर है। यहाँ पे वैसी लीडरशिप नहीं थी इसलिए वो जो पिक करने वाली आदत थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो पूरी तरीके से फेल हो गई और उसकी वजह से मूवमेंट लंबा चलता गया कि VC को आना ही पड़ेगा, आना ही अगर बात करनी है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एकमात्र ऑप्शन था वहाँ पर। तो अगर VC सर आ जाते हैं बाहर निकल के कि हाँ हमारे स्टूडेंट, हमारे कैंपस, सब कुछ हमारा ही है, तो वहीं पे बात ख़त्म हो सकती थी। आप जब पांच लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, वैसे आप स्टूडेंट्स को अगर कन्विंस कर लेते हैं सीधा साधा, अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रखता है, किस तरीके से काम किया उसने, कहाँ कहाँ पे निगेटिव माहौल बनाया गया, वो सब फिर अलग नज़रिया है उसका।
नहीं वो तो मतलब आपने जो बोला वो पॉजिटिव था कि मूवमेंट में क्योंकि लीडरशिप नहीं,
कई लोगों के लिए ये नेगेटिव भी है,
बट व्हाट अदर, व्हाट डू यू थिंक वाज द नेगेटिव, मतलब वीकनेस क्या रही जिससे शायद और बेहतर हो सकती थी? पॉजिटिव्स तो हमको पता ही है जो आपने अभी कहा और कुछ कुछ और भी तो आपने बात बोला है। नेगेटिव मतलब क्या लगता है कि कोई ऐसा कुछ लगा आपको जो ये शायद ये लोग हम लोग कर जाते तो और कुछ इम्पैक्ट होता?
हम लोगों की तरफ से जो एफर्ट डाला गया वो इस कैंपस और इस सराउंडिंग के हिसाब से बेस्ट था।
अच्छा,
पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर इससे बढ़ के कुछ करते तो पहली चीज़ तो ये थी कि भाई पूरे मूवमेंट का वॉयलेंट होने का खतरा था, तो वो और डेंजरस सिचुएशन हो जाती। तो उसको ऑप्शन को हटाते हुए जो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया गया कि हम लगातार गेट पे ही रहेंगे, हमने गेट भी नहीं बंद किया, जो साइड के गेट थे वो ओपन थे। अगर जैसे हॉस्पिटल है या मंदिर है, पब्लिक प्लेस है, यूनिवर्सिटी तो है नहीं है, तो उस हिसाब से उस गेट में एंट्री और एग्जिट के पॉइंट ओपन थे। फिर बीच में ये भी एक दौर आया कि जब आपकी कोई नहीं सुना, जब आप फ्रस्ट्रेट हैं तो आप वो भी गेट बंद कर दीजिए, लेकिन कुछ समय बाद वो गेट खोल दिया गया था कि नहीं एम्बुलेंस हैं, मंदिर वगैरह के सबके हिसाब से एक गेट जो साइड वाला गेट है वो ओपन रहे हैं और जो मेन गेट है वहीं पर बैठे हुए। अब ये बाई चांस ही था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर देते हुए वहाँ पे लाठी चार्ज करवा दिया, तो वो उस तरीके से।
लाठी चार्ज के टाइम पे आप कहाँ पे थे?
वहीं पे थे, गेट पे।
गेट पे थे? हाँ, नॉट VC ऑफिस के पास?
ना ना ना, गेट पे थे।
गेट पे थे? आपको भी
गेट पे थे? हम लोग दौड़ रहे थे कि कैसे बचा जाए, सैंडल चप्पल इधर उधर फेंकते हुए निकल रहे थे बस।
अच्छा, तो कोई स्पेसिफिक टारगेटिंग हुई आपके ऊपर बाद में रिपरकशन इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन?
नहीं, हमको ये लगता है कि कुछ ही लोगों को टारगेट किया गया कि, और सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी तब तक उस एक हफ्ते में कि रिस्पॉन्स मूवमेंट का, ये तो सबको जाहिर था कि मूवमेंट अपने आप में मोरली साउंड है, तो उस पर आप कोई इफ बट नहीं लगा सकते। तो जो नेशनल कवरेज मिली वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिली, वरना फिर ये होता कि जो रीजनल मीडिया है, यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं, उसके थ्रू अलग अलग चैनल से जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोशल मीडिया से ही रिपोर्ट जा रही थी लोगों से, कई उसमें सोशल मीडिया के चैनल्स हैं जिसपे वीडियो आए हैं लाठीचार्ज के, अगर वो नहीं रहे होते तो अपने आप में वो लाठीचार्ज के थ्रू ही आवाज़ भी बंद हो गई होती, तो इतना बड़ा इशू ही नहीं होता। सोशल मीडिया का भी एक बड़ा यहाँ पे रोल है। फिर उसके बाद लाठी चार्ज हो जाना, जैसे होता है ना कि किसी भी जैसे कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में होता है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अगर फोर्सफुली रोका गया है तो उसका भी एक साइड इफ़ेक्ट निकलेगा एक समय बाद। जैसे होता है ना कि घर में अगर आप किसी को रूम में ही बंद कर दे रहे हैं तो एक समय बाद या तो उसकी डेथ हो जाएगी या वो गेट तोड़ देगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि एफर्ट अगर कोई लगा रहा है तो गेट ही पे लगाएगा क्योंकि उसको पता है कि यही एकमात्र ऑप्शन है। इसलिए अगर स्टूडेंट्स को ये था कि हमको ही पता है कि हम बैठ के ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, जब कैंपस के ही लोग आपकी नहीं सुनेंगे तो हम बाहर जाके पीएमओ और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से मिलकर क्या करेंगे। सबसे बड़ा फॉल्ट तो ये था कि अगर यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ के अदर स्टाफ ने सपोर्ट दिया होता तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन जाता। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी इश्यूज़ हैं लेकिन वहाँ पे भी वही चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ है, स्टूडेंट्स एक तरफ है, कोई बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, बीच में कोई वैसा इंटरेक्शन नहीं है कि आप एक दूसरे के इश्यूज़ को समझ सकें।
इस मूवमेंट में आप जो पार्ट हुए उसमें व्हाट चेंज्ड पर्सनली फॉर यू, व्हाट चेंज पर्सनली फॉर यू, आपके आपके लिए क्या चेंज रहा इसके लिए, इसके जुड़ने के बाद पर्सनली क्या चेंज?
सबसे बड़े चेंज भाई हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे पहले चीज़ें थी ना कि कुछ भी हो रहा है इंसिडेंट को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि आप उतने बड़े पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज तो नहीं कर पाएंगे, ये तो क्लियर कट था। लेकिन जब हम लोग अलग अलग मूवमेंट को गए देखा वहाँ पे, वही चीज़ अन्ना आंदोलन के बाद से ही कि नहीं अगर छोटी छोटी चीज़ें भी मिलके एक हो सकती हैं तो वाकई यहाँ भी कुछ चेंज हो सकता है, तो वो वाली एक फीलिंग थी ही हम लोगों में। क्योंकि अलग अलग लाइब्रेरी इशू भी एक बड़ा इशू था, उससे भी अच्छी चीज़ें निकली थी। बस ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरीके से पॉजिटिव साइन नहीं देना चाहता था, वो चीज़ वहाँ पे भी थी और वो चीज़ यहाँ पे भी है।
आगे क्या प्लान है, व्हाट्स योर करियर एंड अदर प्लान्स फॉर लाइफ?
अभी तो मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ में जो पीएचडी चल रही है, अब देखना ये है कि जॉब पहले कहाँ मिलती है।
ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।
थैंक यू।